हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, तो आज इस्कॉन की संस्थापना का दिवस है। तो आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई थी आज के दिन। तो हम लोग सुनेंगे प्रभुपाद लीलामृत में उस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन है, तो उसमें से मैं पढ़ूंगा, आप लोग इसको सुने ध्यान से। तो ये जो घटना है आप लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क की घटना है। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में है, और कहाँ पर हैं? 26 सेकंड एवेन्यू यहाँ पर हैं प्रभुपाद। तो पहले से ही प्रभुपाद जो है बोल रहे हैं अपने साथियों से। अभी तो उनके शिष्य भी कोई नहीं बने, शायद कोई शिष्य बने हों, लेकिन उनके साथी हैं, एक प्रकार से मित्र की तरह ही हैं जो प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े थे जब उन्होंने पहले पहल ये नाम गढ़ा था इस्कॉन। तो देखिए, प्रभुपाद की जो जन्म पत्री थी तो उसमें लिखा हुआ था, उसको जन्मपत्री बोलते हैं ना, जन्मपत्री है? तो उसमें लिखा हुआ था कि ये बालक 70 साल की उम्र में समुद्र पार करेगा और पूरे विश्व में 108 मंदिर, राधा कृष्ण के 108 मंदिर बनाएगा, है ना। तो जन्मपत्री में जो बातें लिखी होती हैं वो कुछ मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं, है ना, बहुत बारीक बातें तो नहीं होती, पूरा विवरण तो नहीं होता है। इस्कॉन का नाम नहीं था उसमें जन्मपत्री में, है ना। अगर ये नाम होता तो प्रभुपाद पहले से सोच लेते, लेकिन ये तो प्रभुपाद ने सोचा है, तो सोच रहे हैं प्रभुपाद इस्कॉन का नाम देंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि झांसी में भी प्रभुपाद ने ये शुरू की थी, किस नाम से किया था? लीग ऑफ डिवोटीज, हिंदी में बोलेंगे भक्तों की सेना, है ना, भक्तों की सेना, सैन्य संगठन, है ना। तो ये प्रभुपाद ने बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, है ना। तो प्रभुपाद तो कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है पहले से कि 70 साल की अवस्था में ये कार्य करेंगे तो 70 साल अभी प्रभुपाद जो है, ये आज का जो दिन है ये आप लोग जानते हैं कि श्रावण कृष्ण नवमी है, श्रावण कृष्ण नवमी है, तो श्रावण कृष्ण नवमी का दिन था वो 1966 में, ठीक है। और प्रभुपाद ने जन्म लिया था भाद्र कृष्ण नवमी को 1996 में, है ना। तो एक महीने के बाद, ठीक एक महीने के बाद आने वाली है वो तिथि भाद्र कृष्ण नवमी, तिथि बिल्कुल वही है, पक्ष भी वही है, केवल महीने का अंतर है। श्रावण कृष्ण नवमी है आज, और भाद्र कृष्ण नवमी को जो है प्रभुपाद का जन्म है। तो भाद्र कृष्ण नवमी यानी एक महीने के बाद प्रभुपाद जो है कितने साल के हो जाएंगे, 1996 और 1966, 1966 में किया था ना ये, है ना। तो कितने साल के? 70 साल, 70 साल में एक महीना को। तो जन्मपत्री में जो लिखा है 70 साल की अवस्था लिखी है, तो 70 साल की अवस्था एक महीना कम है, है ना, पूरा पूरा एक महीना कम है 70 साल की अवस्था में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद हंस पड़े। तो इस्कॉन भी जो है प्रभुपाद ही बता सकते हैं कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, पूरा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगे लिखा है, बोवरी पर रहते हुए ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इसलिए यह नाम भारत को लिखे गए उनके पत्रों में और विलेज वायर्स पत्रिका में प्रकट हो चुका था। तो प्रभुपाद के दिमाग में ये बात थी बहुत पहले से। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता, वो नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। तो मित्र ही कहेंगे, क्योंकि जब तक जो है समर्पित ना हो, दीक्षा ना प्राप्त करे, तो तक्षस्य नहीं तो प्रभुपाद हैं, है? प्रभुपाद किसी को शिष्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना, तो मित्र ही कहा जाएगा, है ना। तो एक मित्र ने सुझाया था, क्यों सुझाया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, है ना, जिसमें सब शब्द तो अंग्रेजी के हैं, नहीं एक शब्द है जो लोग नहीं जानते हैं, वो कौन सा शब्द है, कृष्णा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना प्रसन्न, है ना। तो बाकी सब लोग जो है समझेंगे, लेकिन कृष्ण का नाम लोग नहीं जानते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जब लोग पढ़ेंगे कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसन्न, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो लोगों के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये कृष्ण क्या होता है, ना? तो किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शसनेस पर था। तो ऐसी बात नहीं कि प्रभुपाद ने नहीं सोचा था, लोग थोड़ी समझेंगे कि कृष्ण क्या, कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण किस चिड़िया का नाम है, किस वस्तु का नाम है, लोग नहीं जानते ना। लेकिन प्रभुपाद का आग्रह था कृष्ण कॉन्शसनेस, है ना, क्यों, क्योंकि कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, कोई अगर नहीं भी जानता कि ये क्या चीज है, मतलब कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, क्या चीज है, कोई नहीं भी जानता है और तो भी कृष्ण का नाम बोलता है, तो इसमें बहुत शक्ति है कृष्ण के नाम में, कृष्ण के नाम में पूरी शक्ति, कृष्ण की पूरी शक्ति है, निज सर्वशक्ति, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि आपने अपने नामों में संपूर्ण शक्तियां डाल दी, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, और कोई नियम, समय का कोई नियम भी आपने नहीं बनाया कि कृष्ण का नाम जो है इस समय लेना है, इस समय नहीं लेना, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, आपकी इतनी कृपा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य दुर्दैवम ईदृश में जनिन अनुराग, कि मेरा अनुराग नहीं है, फिर भी मेरा अनुराग पैदा नहीं हुआ। तो अनुराग नहीं पैदा हुआ तो भी आप कृष्ण का नाम लेते हैं, तो इसमें बहुत शक्ति है, बहुत बड़ा लाभ है, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया कि इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। अच्छा, गॉड कॉन्शसनेस है, गॉड कॉन्शसनेस में क्या आपत्ति है, तो प्रभुपाद ने कहा कि गॉड कॉन्शसनेस यानी ईश्वर भावना मृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और कम वैयक्तिक था, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है, मतलब इस गॉड इस नाम में वो शक्ति नहीं है, वो शुद्धि नहीं होती जो कृष्ण नाम में। हालांकि गॉड भाई कहते हैं तो आपके दिमाग में विचार आता है कि कोई ईश्वर है, कोई ईश्वर है, गॉड ईश्वर, ईश्वर अल्लाह, तो ये नाम जो है कृष्ण के हैं, लेकिन ये नाम जो है मतलब क्या है कि मुख्य नाम नहीं है, नाम नाम मुख्यतरम नाम है कृष्णाख्यम में परंतर, जितने भी नाम है में जो मुख्यतर नाम है वो कृष्ण है, है ना। तो बाकी नाम गौण है, गौण है मतलब गुणों पर आधारित है, तो उनमें उतनी शक्ति नहीं होती उन नामों में, गॉड ईश्वर अल्लाह, तीन नामों में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है गॉड नाम, है हालांकि अर्थ इसका लोग समझ जाएंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस, है तो अर्थ की दृष्टि से ये ज़्यादा स्पष्ट है कृष्ण कॉन्शसनेस की तुलना में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, कमजोर। देखिए प्रभुपाद की दृष्टि देखिए, प्रभुपाद कैसे सोच रहे हैं, लोग लिखा हुआ देखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, है ना, तो कृष्णा ये नाम जो है उनके दिमाग में आएगा, है या बोलेंगे सुनेंगे तो ये नाम उनके दिमाग में आएगा, चाहे कृष्ण को भगवान ना भी माने, लेकिन तो भी इसमें आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। और प्रभुपाद जी क्या देने आए थे पूरे संसार को? आध्यात्मिक शक्ति देने आए थे, है ना। तो ये, और फिर कम वैयक्तिक, दोनों बातें हैं। गॉड है ना, तो गॉड ईश्वर, तो लोग क्या मानते हैं? हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? निराकार। आजकल जो है बहुत ज़्यादा निराकार बात फैला है, ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, हैं गॉड है, लेकिन कैसा क्या सोचते हैं भाई? निराकार है, ये सब जगह है। अगर ईश्वर सब जगह है तो निराकार ही होना चाहिए। आप इतना उनकी बुद्धि नहीं है उनके पास कि भगवान साकार होते हुए भी सब जगह हो सकते हैं, भगवान साकार होते हुए भी सब जगह हो सकते हैं, इतना लोग समझ नहीं सकते। तो सामान्य दृष्टि जो है, सामान्य बुद्धि से अगर लोग सोचते हैं भाई सब जगह है भगवान या ईश्वर सब जगह है, तो कैसा होगा? निराकार ही होगा। जैसे हवा है, सब जगह है हवा, तो कैसा है? निराकार है। आकाश सब जगह है, तो कैसा है? निराकार है, है ना। अब ये जो करताल है, ये हर जगह तो नहीं हो सकता। अगर आकार है तो हर जगह नहीं हो सकता। आप जैसे बैठे हैं यहाँ, तो हर जगह तो आप नहीं हो सकते, अपने घर में तो आप नहीं हैं, आप आकार हैं, आपका आकार है। तो लोगों के दिमाग में क्या है, ईश्वर की धारणा जब होती है कि भाई ईश्वर है ना, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर सब कुछ सुन रहा है, ईश्वर साक्षी है, तो क्या सोचते हैं ईश्वर को? एक निराकार वस्तु या व्यक्ति। अब फिर व्यक्ति फिर कहाँ रहा व्यक्ति? निराकार शक्ति है। ईश्वर क्या है? एक शक्ति है जो सब जगह व्याप्त है, निराकार शक्ति है। भाई हम उसी को मानते हैं, हम तो शक्ति को मानते हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं सोचते कि कोई व्यक्ति हो सकता है, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने दो बातों पर विचार किया कि गॉड कॉन्शियसनेस में दो कमियां हैं। हालांकि एक गुण है क्या, कि अर्थ स्पष्ट हो रहा है, हैं, लेकिन दो कमियां हैं। कौन कौन सी दो कमियां हैं? पहली क्या है? पहली कमी क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर। गॉड ये जो शब्द है आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है, आप समझ रहे हैं। और दूसरी कमी क्या है? कम वैयक्तिक है, कम वैयक्तिक है, मतलब पर्सनल, लेस पर्सनल, लेस पर्सनल, कम वैयक्तिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और दूसरा कम व्यक्तिगत, कम व्यक्तित्व वाला, व्यक्तित्व का बोध नहीं होता ईश्वर शब्द से, है ना। तो फिर हाँ, अब प्रश्नता है कि चलो ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में मान लिया, लेकिन लोग तो नहीं जानते। तो प्रभुपाद कहते हैं, और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते तो कृष्ण ही कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमाओं को फैलाकर उन्हें बताएगा। अब ये संघ के सदस्यों का काम है कि बताएं कि कृष्ण कौन है, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो ये संघ जो है मतलब क्या है, हा? कुछ है, लोगों का संघ है जो कि कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, और वे बताएंगे लोगों को कि कृष्ण ईश्वर हैं। इसमें लिखा है कि ये संघ हर कस्बे हर गांव में, एवरी टाउन एंड विलेज उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा कि कृष्ण कौन है। आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं सदी में रचित श्री रूप गोस्वामी की पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का रूपांतर था। कृष्ण भक्त रसी, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। रूप गोस्वामी ने कृष्ण रस कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। गुरु गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है और उनका जो है ये आदेश है रूप गोस्वामी का, क्या कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम, खरीद लो। क्या खरीद लो? कृष्ण भक्ति रस भावितामति, ऐसी मति जिसमें कृष्ण भक्ति रस से भावित हो, ऐसी मति खरीद लो। क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, और कहीं भी मिले तो खरीद लो, तुरंत जेब में हाथ डालो, हाँ कितने की है पैसा दो खरीद जल्दी। क्रियताम खरीद लो यदि अगर कुतो भी लभ्यते, कहीं मिले तुरंत खरीदो, तुरंत खरीदो जितना भी पैसा देना पड़े, हैं लेकिन उसका मूल्य क्या है? लौल्यम मूल्यम, लौल्य मूल्य, उसका जो मूल्य है वो क्या है? लोलुपता लोभ उत्कंठा, ये मूल्य है, इसको खरीदो, उत्कंठा प्राप्त करो। अब उत्कंठा आपके अंदर नहीं है यानी कीमत नहीं है, तो फिर क्या करो? तो फिर क्या किया जाए? अगर आपके पास वो कीमत नहीं है खरीदने के लिए, क्या कीमत है? लौल्यम लोभ उत्कंठा नहीं है आपके पास, नहीं है, निर्धन है, तो क्या करें? तो क्या करें? किसी भक्त से मांगे किसी प्रकार से किसी भक्त से पैसा उधार मांगो, या किस तरह से भीख मांगो, ये मूल्य मांग लो और फिर खरीद लो इसको, है ना। तो ये जो है आप की चिंता होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये प्राप्त हो। आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन में आपका जो है असली लाभ जो है वो ये है, और इसको प्राप्त करने के लिए आपकी चिंता होनी चाहिए, कि आपकी चिंता होनी चाहिए कहाँ मिल रही है और कहाँ वो इसकी कीमत मिलेगी आपको। कहीं मिल रही है तो वो पता होना चाहिए कहाँ मिल रही है ये चीज़, है और उसका पैसा उसका मूल्य आपके पास नहीं है तो खोजो अपने अंदर, छानबीन करो सब जेबों में, है खूब हाथ डाल डाल करके, और नहीं मिल रहा है तो किसी भक्त से मांगो, प्रभु दे दो उधार या भीख मांग करके ले लो। तो रूप गोस्वामी का ये आदेश है। तो भाविता है ना, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, है ना। तो उसी से ही प्रभुपाद ने क्या बनाया? कृष्ण भावनामृत संग, कृष्ण भावना भाविता मति भावना, कृष्ण भावनामृत संग। आगे लिखा है जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। किंतु इस कौन के एक लाभ ना कमाने वाले कर्मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी, है ना। अब क्या है, एक जो है सोसाइटी की स्थापना करनी है, इसमें क्या है कर्मुक्त धर्म कि इसमें जो है मतलब लोग दान देंगे, चैरिटेबल सोसाइटी है, तो जो लोग दान देंगे तो लोग दान देंगे क्योंकि धार्मिक संस्थाएं दान देंगे, है और सरकार की ओर से उसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी मिले, तो इसके लिए क्या है पंजीयन की आवश्यकता है। पंजीयन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है जी, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या धन की आवश्यकता और वकील की आवश्यकता है, है ना। तो कॉर्लियर जेंस ने धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वो बोफरी पर प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने को वह राजी हो गया था। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्ड स्मिथ से संपर्क किया था। अच्छा, उनके वकील स्टीफन गोल्ड स्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक था और जिसके पत्नी और दो बच्चे थे, एक पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कार्ल ने उसे प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वो 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था संस्थापन, कर मुक्ति, प्रभुपाद की आप प्रवासन स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। तो ये सब जो है मतलब चर्चा के विषय थे। पहला क्या था, संस्था की संस्थापना करना है, इनकॉर्पोरेशन है, और फिर कर मुक्ति होना चाहिए, इनकम टैक्स एग्जम्पशन, कोई दान देगा तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन, और फिर प्रभुपाद की आप्रवासन स्थिति। आप्रवासन का मतलब इमिग्रेशन है ना, तो वो स्थिति पर भी विचार करना है कि प्रभुपाद को अभी कितने दिन का मिला है ना वीसा, फिर उसको और भी बढ़ाना है, तो ये सब आवश्यकताएँ हैं। तो तीन जो है विषय थे चर्चा के। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला, एक बार वो अपने बच्चों को साथ लाया, जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया हुआ सूप बहुत पसंद आया। ब्रैकेट में झोल लिखा है, सूप तो समझ में आता है, झोल का क्या मतलब? प्रभुपाद ने सूप तैयार किया था, वही है झोल सूप है। अच्छा ठीक है, तो प्रभुपाद ने बना करके पिलाया, तो पसंद आया। वो उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा, जो वकील था शाम की कक्षाओं में आने लगा, और शाम की कक्षाएं होती थी किस पर? भगवद गीता पर। जहाँ वह श्रोता मंडली में प्रायः अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिप्पी लोग थे। आप सोचिए कि देखो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की थी उस समय सब हिप्पी लोग थे। ये कितने आश्चर्य की बात है सोचिए, और वो भी इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना हो रही है, और अभी कैसे लोग हैं उनके साथ प्रभुपाद के जुड़े हैं जो हिप्पी हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए एक शाम को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लेने और निगमीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। तो वो दिन था आज का, आज की शाम का, आने वाला है वो समय आज की शाम को है। तो गीता क्लास में आया, अब ये जुलाई 11, अभी ये जुलाई 11 की शाम है, तारीख के हिसाब से वो 11 जुलाई थी, जबकि आज कितनी तारीख है? 31 जुलाई है ना, तिथि के हिसाब से वो श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। तो प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं, गोल्डस्मिथ पतलून कमीज और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ पड़ोस में होने वाले शोरगुल से विचलित ना होता हुआ ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है ना। देखिए एक ही व्यक्ति है जो हिप्पी नहीं है, बाकी सब हिप्पी हैं। देख कितना आश्चर्य की बात है, जिस दिन जो है इस्कॉन की स्थापना हुई थी उस दिन एक भी प्रभुपाद का जो है समर्पित शिष्य नहीं था, सब हिप्पी लोग बैठे थे। एक व्यक्ति था जो हिप्पी नहीं था, तो वो क्या था? वकील था। वो अपना जो है वकील, उसका व्यवसाय था। कोई भी भक्त नहीं है। प्रभुपाद समझाते रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद्गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकाया करते हैं। प्रभुपाद जी है ना क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बताते थे कि अबोध जनता को बहकाते हैं, अबोध जनता तो मान लेगी भाई गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, तो आप जो है जो कुछ भी समझाएंगे अबोध जनता है, उनके दिमाग में जो है गीता के प्रति श्रद्धा है कि भाई गीता जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, बहुत ऊंचे स्तर का ग्रंथ है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो परम सत्य है, लेकिन क्या लिखा है कोई कुछ भी समझाए गीता के नाम पर लोग उसी को मान लेंगे, गीता में ये बताया। तो जो विद्वान लोग हैं लेकिन भक्त नहीं है, अभक्त हैं, विद्वान लोग हैं है? तो भगवद गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अब जनता को बहकाया करते हैं, और अब वकील की सम्मान उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मानो गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकर्षित करने हेतु वे व्याख्यान के विषय के मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। एक वकील बैठा हुआ है ना। तो देखो प्रभुपाद का जो इरादा तो कुछ दूसरा ही है ना। अभी गीता का व्याख्यान दे रहे हैं प्रभुपाद, रोज की तरह गीता पर प्रवचन दे रहे हैं, है ना। अब लोगों का ध्यान, वकील का ध्यान विशेष रूप से खींचने के लिए प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। बड़ा रोचक है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष मिस्टर गोल्डस्मिथ जानते हैं कि विशेषज्ञ वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कर सकते हैं। वकील, सरकार ने जो कानून बनाया है, वकील जो है उस शब्दों को जो है खींचतानी करके उसका दूसरा अर्थ निकाल देते हैं। कानून, कानून का मतलब ये है ना। तो प्रभुपाद बताते जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया संबंधी एक कानून बनाया और एक विशेषज्ञ वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार ने कानून बनाए तो कुछ शब्दों में जो है उस कानून को पास किया, भाई ये शब्द हैं इन शब्दों में कानून का, तो वकील जो उन शब्दों की व्याख्या करके उसका दूसरा अर्थ निकाल दिया कि इसका ये मतलब है। अब सरकार को फिर क्या करना पड़ा, शब्द बदलने पड़े। तो वकील ने जो है मतलब अपनी बुद्धि से, तो इस तरह से प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, गीता में भगवान के शब्द हैं, गीता में भगवान ने अपने शब्द दिए हैं, तो अब जो है वो जो वकील की तरह जो है जो विद्वान होते हैं उन शब्दों का अर्थ निकाल करके सिद्ध कर देते हैं कि हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, सब भगवान हैं और कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान के शब्दों से जो है भगवान को निकाल देते हैं और अपने को भगवान घोषित कर देते हैं, सबको भगवान घोषित करते हैं या भगवान निराकार है कुछ भी घोषित कर देते हैं। गीता की व्याख्या है ना। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया, एक वकील बैठा हुआ है तो वकील के सामने प्रभुपाद जी बता वकील का उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा, कानून तो वही था लेकिन शब्द बदलने पड़े, है ना। जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, है? तो एक व्यक्ति को फांसी लगनी थी तो वो जो है इनके पास आए कि मुझे बचा लो, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा मैं तुम्हें बचा लूँगा, बहुत बड़े वकील थे ना, है? तो उसमें जो मतलब था कि ही शुड बी हैंग्ड, वो कानून के हिसाब से था कि ही शुड बी हैंग्ड, मतलब उसको फांसी पर लटका दिया जाए, है ना। तो जब फांसी पर लटकाया गया तो उन्होंने कहा कि अब उतारो इसको, उतारो, लटका दिया उतार दो, उतारो, है ना। तो फिर सरकार को जो है वो उसको बचा लिया उन्होंने, फिर सरकार को कानून बनाना पड़ा कि ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, कि जब तक मरे नहीं तब तक उसको फांसी पर लटकाना है। तो सरकार को जो है कानून बदलना पड़ा या शब्द बदलने पड़े। तो वकील ऐसे होते हैं, तो उस व्यक्ति की जान बचा ली उन्होंने, हैं, कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, तो लटकाया गया, उतारो अब निकालो उसको। तो वकील ऐसे होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था, अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था नष्ट करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए इकट्ठे नहीं हुए हैं कि कृष्ण जो कहना चाहते हैं उनको जो है उस बात को जो है खत्म करके और शब्दों की व्याख्या अपने हिसाब से करें, जो हमें अच्छा लगता है वैसा व्याख्या करें। प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का उद्देश्य ये नहीं है कि कृष्ण गीता में जो शब्द बोले हैं उनका जो है अर्थ अपने मनमाने ढंग से निकाल करके हम शब्दों को पकड़ेंगे और जो आशय है कृष्ण का कहने का उसको हम जो है बदल दें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शब्दों को बदलते हैं ताकि आशय ना बदले, है ना। तो ये जरूरी है। जैसे भगवान शब्द है, भगवान सब शास्त्रों में जो है सामान्यतया प्रयुक्त हुआ है, जैसे वशिष्ठ भगवान, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, है ना। तो ऐसे मतलब भगवान शब्द बहुत जो है सामान्य है, किसी को भी भगवान शब्द से का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भागवत में भी मिलते हैं ये शब्द, हम लोग नहीं प्रयोग करते भगवान शब्द सबके लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इससे जो है अगर भ्रम पैदा होता है कि भाई इंद्र भगवान है, शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ना प्रयोग करें। जबकि अनुवाद में मतलब आता है, जो प्रभुपाद की पुस्तकों का अनुवाद है उसमें आता है भगवान इंद्र भगवान, लेकिन मेरा सुझाव है कि भगवान शब्द का प्रयोग ना किया जाए, है ना। ज़्यादा अच्छा है ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए, भगवान शब्द का प्रयोग ना किया जाए, है ना। अंग्रेजी में तो लॉर्ड शब्द है, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड ब्रह्मा, है ना, लेकिन हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो कुछ अंतर होना चाहिए। तो मतलब कहने का कि हम शब्द बदल करके भी शब्द बदल करके भी हम रक्षा करें अर्थ की, कि जो अर्थ है, संदेश है, वो ना बदला जाए, है कि नहीं, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, शब्दों को नहीं बदलते हैं, संदेश बदल देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं माम एकम शरणम रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, तो वे शब्द नहीं बदलते हैं, कहते हैं एकमात्र मेरी शरण में आओ, आप समझ रहे। तो कृष्ण ने गीता में कहा एकमात्र मेरी शरण में आओ, तो उन्होंने शब्द को नहीं बदला, हैं, और क्या बोलते हैं एकमात्र मेरी शरण में आओ, मतलब आप लोग मेरी शरण में आओ, अब अर्थ बिल्कुल बदल गया, आप समझ रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है, है ना। हमारा उद्देश्य है कृष्ण कहते हैं एकमात्र मेरे शरण में आओ, तो हम कहते हैं एकमात्र कृष्ण की शरण लो, हम ऐसा बोलेंगे ना, तो हम तो शब्दों को बदल लेंगे, हैं, ताकि संदेश ना बदले। तो शब्दों को बदलने की आवश्यकता भी है, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जो है शब्दों को बदल बदल करके अनुवाद लिखते हैं, शब्दार्थ भी लिखते हैं शब्दों को बदल बदल करके, तात्पर्य भी लिखते हैं शब्दों को बदल बदल करके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो कि आप भगवान हैं या भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये जो है मतलब उद्देश्य ये है, इस कौन का उद्देश्य ये है, तो हाँ प्रभुपाद कहते हैं अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था नष्ट करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, लेकिन अनाधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं, ये अनाधिकृत है, अनधिकृत है, अनऑथोराइज्ड लोग। हाँ, अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, अच्छा मिस्टर गोल्डन स्मिथ आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को कहा कि आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ सुनने वाले सब हैं, तो वैसे हम पूछते हैं भाई किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, है तो क्लास में जो है एनी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ प्रभुपाद एक विशेष दिन है ना, और विशेष उद्देश्य है, इसलिए प्रभुपाद जी जो है सबको प्रश्न करने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अच्छा मिस्टर गोल्ड स्मिथ आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गोल्ड स्मिथ खड़े होते हैं और वहाँ एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं। वास्तव में वो प्रश्न नहीं था, ये प्रभुपाद की चाल थी, ये प्रभुपाद की एक चाल थी, है ना। और ऐसे प्रभुपाद जी अगर बता दे तो कोई तैयार भी नहीं होता ना इस काम के लिए। तो गोल्ड स्मिथ खड़े होकर के घोषणा करते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या हो गया, एकदम से टॉपिक बदल गया, क्या हो गया। जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के निगमन के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं। सिग्नेचर मांग रहे हैं कि स्वामी जी, यहाँ प्रभुपाद अभी नाम नहीं है, अरे कोई प्रभुपाद नहीं जानता इनको, प्रभुपाद नहीं बोलता है, स्वामी जी बोलते हैं। तो स्वामी जी एक नया धार्मिक संस्था को पंजीकृत कर रहे हैं, इसमें आवश्यकता है कुछ हस्ताक्षर करताओं की, हस्ताक्षरों की आवश्यकता है प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने क्या बोला, तो ये यहाँ उपस्थित हैं, आप इनके पते भी ले सकते हैं। ये लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप इनके पति भी ले लो, प्रभुपाद बोले। देखो ये ड्रामा है ना, एक ड्रामा है ये, है ये ड्रामा खेला जा सकता है इस तरह का, है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये लोग यहाँ उपस्थित हैं, है? आप इनके हस्ताक्षर ले लो, पता भी ले लो, ले लो। तो श्री गोल्डेश्वर कहते हैं मैं अभी ले सकता हूँ, हाँ अभी ले सकता हूँ। प्रभुपाद, हाँ आप ले सकते हैं। प्रभुपाद ने अपनी तरफ से अनुमति दे दी, किसी की अनुमति नहीं ली, अपनी अनुमति से हाँ हाँ ले लीजिए ले लीजिए। बिल तुम अपना पता दे सकते हो। अब आगे चल करके वो उसकी दीक्षा हुई होगी, कुछ नाम हुआ होगा, अभी तो बिल बिल तुम अपना पता दे सकते हो, और रेफल तुम अपना भी दे सकते हो, और डॉन मिस्टर ग्रीन रॉय सबके नाम लेके दे दो पति अपने दे दो। बैठक जो है समाप्त होती है। न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे वे उस छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। खड़े हो गए कि हस्ताक्षर ही केवल करना है और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कोई बंधन तो है नहीं, चलो हस्ताक्षर कर। और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले हैं, अटैची खोली पन्ने निकाले और उनको सरसरी निगाह से देखने और यथा निर्देश उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब कितना लिखा हुआ है वो कौन पढ़ेगा। वकील ने सरसरी निगाह से देखा और हस्ताक्षर का बताया कि भाई यहाँ हस्ताक्षर करना है। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। प्रतिबद्ध मतलब कमिटेड नहीं था। उसकी कोई किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि भाई मुझे मैं मुझे कोई जिम्मेदारी देने वाला हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं, हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ठीक है, हस्ताक्षर अगर करने में कोई बंधन नहीं है तो हस्ताक्षर कर दिया जाए। फिर स्वामी जी जो है अच्छा प्रवचन देते हैं, हम सुनते हैं, तो कम से कम अगर हस्ताक्षर करने में अपना कुछ नुकसान नहीं है तो कर दिया जाए हस्ताक्षर। स्वामी जी का अगर काम चल रहा है तो वो सोचते हैं। मिस्टर गोल्डस्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर करता मिल जाते हैं, जितनी आवश्यकता थी उतने हस्ताक्षर करता मिल गए। वे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति क्या सहानुभूति, अकेले हैं बेचारे, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अकेले हैं, कोई इनका सहायक नहीं है, तो कुछ सहायता अगर हो जाए तो कर दिया जाए सहानुभूति, और उनकी सहायता के लिए उनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक एक वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे, माइकल ग्रांड जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और अपना पता लिख देता है कम से कम एक साल तक के लिए। माइक की मित्र जेन और जेम्स ग्रीन है। अच्छा, जेन शायद लड़की होगी। इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है। ट्रस्टी हैं ये, किंतु स्वामी जी के वर्तमान संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है कि चलो हमारा भी जो है एक है बहुत बड़ा योगदान हो गया बिना कुछ किए। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा। न्यासी मतलब ट्रस्टी, अगले साल जो है कुछ दूसरे ट्रस्टी होंगे है जो कि साइन करेंगे इसके लिए। वे हैं पाल गार्डिनर राय और डान। तीसरे वर्ष के न्यासी हैं कार्ल ईयर जेन्स, बिल एप्सटीन और रेफेल। उनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में टंकित पृष्ठों का आशय क्या है। आधे दर्जन छः पेज में कितना मैटर लिखा हुआ है किसी को पता नहीं है, ना किसी के पास टाइम है पढ़ने का कि भाई छः पेज में जो है टाइप किया हुआ मतलब क्या लिखा हुआ है, इतना कुछ नहीं। सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। क्यों, कर से छूट के लिए। क्यों बना रहे हैं, कर से छूट के लिए। कोई दान दे सकता है कर से छूट के लिए। यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में यह उद्देश्य ना तो बहुत महत्वपूर्ण है और ना प्रासंगिक। अनुदान देने कौन जा रहा है? अनुदान देने कौन जा रहा है? मिस्टर गोल्ड स्मिथ के अतिरिक्त किसके पास इतना धन है? ये हिप्पी सड़क के हिप्पी हैं, ये सड़क में सोते हैं, शराब वराब पीते हैं, कुछ करते हैं, इनके पास कहाँ पैसा है? तो कौन दान देगा? मिस्टर गोल्ड स्मिथ जो वकील हैं वही अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर्म छूट से कहीं अधिक के लिए। उनकी योजना तो ज़्यादा है, कोई कुछ बड़ी योजना है। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। देखिए, उस आंदोलन को जो है शुरू कर रहे हैं जो कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा, वो तो भविष्यवाणी है। प्रभुपाद को बल इस बात का है। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, 1960 ईस्वी का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है, एक थोड़ा सा समय था। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्यों के सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है और जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। कलयुग मतलब इतना बढ़ता जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा? सब बिल्कुल पशु की तरह हो जाएंगे। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। ये ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा। ये समय का प्रवाह कैसा होगा? कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा। एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्पांत और उसके परे तक पहुंचती है, फिर भी अपने दो पैर सेकंड वेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का समारंभ कर दिया है। उनके ऊपर बहुत से व्यवहारिक उत्तरदायित्व हैं, किराए का भुगतान ये भी उन्हीं की चिंता है। ये जो बिल्डिंग है जिसका किराया लग रहा है उसको भी कौन देगा? प्रभुपाद। अपने संघ का पंजीयन वर्धमान विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना, अब आगे भक्त बनेंगे उनको पूरा गाइडेंस सब कुछ, यानी उठना और सोना और जागना और खड़े होना, खाना पीना, कपड़े पहनना, सब कुछ सिखाना है प्रभुपाद, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कुछ नहीं जानते, ना उठना जानते, ना बैठना जानते, ना खाना जानते, ना सोना जानते, कुछ नहीं जानते। ये प्रभुपाद के ऊपर कितना भार है, तो भी वे नहीं मानते कि उनके लघु समारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किसी तरह सीमित होता है। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल ये परमेश्वर पर निर्भर है, उन्हें केवल प्रयत्न करना है। प्रभुपाद क्या सोचते हैं? सफलता असफलता कृष्ण के हाथ में है, मुझे क्या करना है? प्रयास करना है। इस कौन के निगमन की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लिखित हैं वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु उन बिंदुओं के समान हैं जो 1953 ईस्वी में झांसी भारत में गठित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। वो प्रयास विफल रहा था फिर भी उसके उद्देश्य बदले नहीं। तो 7 उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा है, कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घाटित है। तीसरा, संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुणों का भिन्न अंश है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। कितने हो गए? 4। 5वां, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना है। कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना है। मंदिरों का निर्माण करना है, यहां लिखा है दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना, यही हो सकता है। या फिर जो मायापुर का प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो हो सकता है संकेत के रूप में। फिर 6वां, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। 7वां है, उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। पत्र और पत्रिकाएं, पत्रिका मतलब मैगजीन है ना, पत्र समाचार पत्र, समाचार पत्र छापना और पत्रिकाएं छापना, मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका ये है ना, और पुस्तकें छापना, केवल छापना नहीं वितरण करना भी, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना है ना। तो 7 उद्देश्य थे, ठीक है। तो इसमें आगे भी काफ़ी वर्णन किया गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है। हाँ जी, माइक हैंड माइक।
आप बताओ कि पहले स्कंद में कहीं प्रभुपाद जी ये वर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस यूज नहीं करते?
प्रभुपाद ने पहले स्कंद में
कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग नहीं करते?
कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग नहीं किया? अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का कहना है, हमने तो ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये पहले स्कंद में प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? अच्छा अच्छा, अगर ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाद में फिर उनके दिमाग में आया रूप गोस्वामी के इस श्लोक से है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मत है ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, तो फिर आगे शब्दों का प्रयोग किया कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये विशेष बात है। तो प्रभुपाद जी को जो है ये विचार उस वहाँ पर आया, और ये तो 3 खंडों में प्रभुपाद ने पहले स्कंद छापे थे, 3 खंडों में छापे थे, और उसके 4-5 बड़े बड़े ट्रंक भर करके ले गए थे, शायद 200 सेट होंगे, 200 सेट ले गए थे प्रभुपाद जी, है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न हैंड माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जब भगवान की कृपा होती है तो मानव शरीर मिलता है, और इसी शरीर से आदमी ऊंची योनि में, नीची योनि में, नरकों में, स्वर्गों में कहीं भी जा सकता है। एक भक्त का जो करुणार कृपा होती है तो वो हाथ पकड़कर भगवत आपको साथ देता है।
देखिए, ऐसा है कि भगवान की कृपा तो ये है कि मनुष्य जीवन आपको दे दिया, और मनुष्य के जीवन में आपको जो है अवसर दे दिया, या अवसर का लाभ उठाएं या अवसर का जो है लाभ ना उठाएं, तो ये आपकी स्वतंत्रता होती है। तो मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे बिंदु आते हैं जहाँ की आपको चुनाव करना होता है कि आप कृष्ण को चाहते हैं या माया को चाहते हैं, है ना। और कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, फिर आपको उसी प्रकार गाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सच्चे हृदय से है कि मुझको जो है ये भौतिक संसार में दुख मिल रहा है, मुझे छूटना है, इन सब दुखों से छूटना है, तो भगवान किसी भक्त से मिला देते हैं, ये भी भगवान का ही कार्य है। परमात्मा के रूप में वो बैठे हुए हैं, और वो आपके हृदय में ही बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन होनी चाहिए आपकी इच्छा। तो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जबकि आप निर्णय करते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे वो मार्ग चाहिए, जिस मार्ग में मैं कष्टों से छूट सकता हूँ हमेशा के लिए, है ना। तो ये विचार जब आता है तो भगवान जो है जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे हों, वे किसी भक्त से मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये भगवान का कार्य। हाँ जी, हैड भाई जी,
जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसे और कुछ नहीं सोचता, तो क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
क्रोध को कैसे कंट्रोल में किया जाए? हालांकि आज का विषय नहीं है ये, आज तो विशेष घटना हुई है। क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ये हरे कृष्ण मंत्र है, आप हरे कृष्णा ये आप हमेशा जप करते हैं, है ना। तो ये मंत्र का मतलब है जो मन की रक्षा करे, मन पत्रा तरा मन रक्षा करे, तो आपके मन की रक्षा करेगा, ठीक है ना। और इसके कई उत्तर हैं, और भी बातें हैं इस विषय में, अभी मैं एक ही उत्तर दे रहा हूँ कि आप मंत्र का जाप करें, तो आपकी इच्छा है कि रक्षा हो तो रक्षा होगी इससे, ठीक है। और कुछ आज के विषय में कुछ प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भामरमण संघ नाम दिया, लेकिन उनके मित्र ने सुझाया, क्योंकि शिष्य बने नहीं थे कोई, तो मित्र ही कहेंगे, है ना। तो मित्र ने सुझाया था, क्या सुझाया था कौन बताएगा? हाँ, गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, है ना। क्यों गॉड कॉन्शियसनेस क्यों रखिए? एक सेकंड, हाँ आप बताइए। हाँ, गॉड एक ऐसा शब्द है जो सब लोग जानते हैं, है ना? अच्छा विचार था भाई, अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर भावना में संघ, है ना। तो इससे जो है पता चलेगा कृष्ण भावनामृत, कृष्ण लोग जानते नहीं, तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हमें शब्द बदलना पड़ेगा। सही विचार था, लेकिन प्रभुपाद हैं आग्रह कर रहे हैं, हालांकि सही विचार है अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर भावनामृत संघ, ये प्रभुपाद का आग्रह है कृष्ण भावनामृत संघ। क्यों? दो कारण। हाँ, पहला कारण आप बताइए, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है क्या? कृष्ण नाम नहीं, गॉड, गॉड नाम, ईश्वर नाम आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है गॉड, है ना। ऐसे हम मतलब बोलते हैं सर्वनियंता ईश्वर, है ना, भगवान है, अल्लाह, ऐसे जिहोवा, ये जो नाम है इनमें आध्यात्मिक शक्ति इतनी नहीं मिलती है जितनी आध्यात्मिक शक्ति किसमें मिलती है? कृष्ण नाम में। नाम ना मुख्य धर्म नाम है, कृष्ण का और भी नाम है, लेकिन कृष्ण नाम में क्या है? संपूर्ण शक्ति कृष्ण की है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रम में बोलते हैं ना, तत्रार्पिता निज सर्वशक्ति नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, जिसमें शक्ति है, है? तो कैसी शक्ति है? क्या कोई नहीं जानता, अगर भगवान को नहीं जानता है और कृष्ण नाम बोलता है तो क्या होगा उससे कुछ लाभ? होगा नहीं होगा? होगा, कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, पूरी शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद का ये कहना है कृष्ण। हाँ, एक तो कारण ये कि कृष्ण नाम में आध्यात्मिक, दूसरा कारण हाँ लेस पर्सनल, मतलब कम व्यक्तिगत है, या अल्लाह बोलते हैं, खुदा, जिहोवा, ईश्वर कुछ भी बोलते हैं, तो मतलब आइडिया क्या होता है दिमाग में, विचार क्या होता है? भाई कोई शक्ति होगी जो सब जगह है, कोई व्यक्ति तो नहीं होगा, व्यक्ति तो नहीं होगा जिससे आप बात कर सकें, आमने सामने बात कर सकें, मिल सकें, ये तो नहीं होगा, है ना, बड़ा मुश्किल है ना। तो लेकिन कृष्ण कोई व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत है ना। अच्छा, फिर अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, कृष्ण में जो है मतलब आध्यात्मिक शक्ति है, है, और ये व्यक्तिगत एक नाम है, कृष्ण कोई नाम है, है, लेकिन फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है? हाँ, हाँ, ये जो सोसाइटी बनाई जा रही है, हाँ, ये सोसाइटी क्या करेगी? खाली थोड़ी, मतलब खाना सोना थोड़ी है काम, क्या काम है आप लोगों? ये सोसाइटी जिसमें जो लोग होंगे, सदस्य होंगे, उनका एकमात्र यही कार्य है लोगों को बताना, बाकी सब अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा। आप केवल बताएं कि कृष्ण परमेश्वर है ना। ये प्रभुपाद के जो है शिष्य की एक लड़की थी सरस्वती, किसकी लड़की थी? भारती माता जी, श्याम सुंदर की लड़की थी, श्याम सुंदर मालती है ना। सरस्वती 4 साल की लड़की थी है ना। तो वो जब लोगों से बोलती थी डू यू नो हु इज कृष्णा, हाँ, तो वो कहता नो, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मतलब वो कहती है कि आप जानते हैं कृष्ण कौन है? तो वो व्यक्ति बोलता नहीं, कृष्ण परमेश्वर है। तो प्रभुपाद कहते हैं सी इज परफेक्ट प्रीचर। तो बहुत सरल कार्य है ना, केवल दोहराना है कृष्ण के संदेश को, दोहराना है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है ये कार्य है कि लोगों को बताएं, ठीक है। और कुछ है आप लोगों की ओर से? हाँ जी, इनको हैंडमाइक दे दो, हैंडमाइक।
प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे, उसमें कहा था कि वृंदावन में सभी चीज को आकर्षित करते हैं, चाहे पता हो, लता पता, पशु पक्षी जो भी हो, तो भगवान कृष्ण के नाम में सर्व आकर्षक है, संसार का हर जीव उससे आकर्षित हो जाएगा।
प्रभुपाद का एक लेक्चर ये बता रहे हैं, तो कृष्ण के नाम में या कृष्ण में मतलब आकर्षण है, हर चीज आकर्षित होती है, लता पता पशु पक्षी सब आकर्षित होते हैं, लेकिन हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं। हम तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं। क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि शुद्ध नहीं है। जैसे चुंबक है लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन अशुद्धियाँ हैं तो फिर लोहा आकर्षित नहीं होता है। तो हमें जो है, अगर आकर्षण, अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण आकर्षित करें हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया है, हम हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, पुस्तकें वितरण कर रहे हैं, ये सब कार्य क्या हैं? शुद्धिकरण के, ठीक है ना। धन्यवाद। निरंधरा श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अंतरण इस्कॉन संस्थापना दिवस महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय।